ओम शांति। अभी हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता रामनाथ भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, वंदन। आपका ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि आपका जन्म एक रूढ़िवादी धार्मिक परिवार में हुआ, जिस कारण से बाल्यकाल से ही धर्म की ओर रुझान रहा और आगे चलकर विभिन्न धर्मों का, दर्शनों का खूब खूब अध्ययन किया। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं, इन शास्त्रों में विस्तार तो बहुत है लेकिन सार पकड़ में नहीं आता है। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी ईश्वर की खोज तो बनी रही, और वो ईश्वर की खोज तब पूरी हुई जब 1972 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला, और उसके बाद आरंभ हो गई एक नई यात्रा कि इस ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में उतार कर उसके लाभों को अनुभव करना और दूसरों को लाभान्वित करना। तो 1978 में मधुबन धरनी में आए, और इस धरनी का प्रभाव किसके दिल दिमाग पर नहीं पड़ता है, तो आपके दिलो दिमाग पर भी इतना गहरा असर पड़ा कि अपना जीवन ही ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया। तो 1978 से आज दिन तक इस हेडक्वार्टर की धरनी पर रहकर आप विश्व भर में अपनी सेवाएं करते हैं। समय समय पर आपका भ्रमण चलता ही रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन सेवाओं में सदा व्यस्त रहते हैं, और 1990 से आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर धार्मिक क्षेत्र के धर्म गुरुओं कहो, सन्यासी कहो, उन सब का, संत सम्मेलन कहो, ये आयोजित करते आ रहे हैं। आप वर्तमान में उसी प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। बहुत ही सरल रीति से और बहुत ही साइंटिफिक वे से राजयोग की बातें सबको सुनाकर बाबा के ज्ञान से कन्विंस करने में आप बहुत ही माहिर हैं, और आज आप सबको कन्विंस करेंगे कि मधुबन तपोभूमि का कितना महत्व है, और इस तपोभूमि में आकर योग तपस्या भट्टी करने का कितना महत्व है। हम तपस्या तो जहां रहते वहां पे भी करते हैं, है ना, भट्टियां भी करते हैं, लेकिन इस मधुबन तपोभूमि में आकर योग भट्टी करना, उसका कितना इम्पोर्टेंस है, उस पर भ्राता जी प्रकाश डालेंगे। तो सुनते हैं भ्राता जी को, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति, ओम शांति। देखो आप भी नेपाल से कहां आए हो, भारत में क्यों आए हो, तपस्या करने आए हो, क्योंकि वहां भी कर सकते हैं, लेकिन मधुबन सारे विश्व के अंदर ऐसे महान तीर्थ है, अपने आप तीर्थ नहीं बना, स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार शिव बाबा ने इस धरती पर ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर और उनके द्वारा तपस्या कराई। कम से कम 200 भाई बहनों का कितना साल तक, हाँ कितने सालों तक यहां तपस्या कराया, और ब्रह्मा बाबा स्वयं कर्मातीत बन के गए, उसका निशान है सारे विश्व के अंदर। कितनी देवी देवताएं हैं, धर्म गुरु है, अभी लेटेस्ट स्वामी विवेकानंद जी है, प्रमुख स्वामी है, सत्ती साई बाबा है, कितने बड़े बड़े साधु संत गए, कोई भी गया हुआ आया नहीं है। एक बार गया उनके, अभी सत्य साई बाबा के कितने फॉलोवर है, उनकी पालना कौन करेगा, कोई भी गया वो वापस आया नहीं आए। एक ही ब्रह्मा बाबा जो गया कर्मातीत होके गया, प्रकृति जीत होके गया और 50 साल तक गुलजार दादी के तन में आकर अपने ब्राह्मण परिवार की सेवा किया। ऐसे किसी भी आत्मा ने, परमात्मा उनके साथ है, उन्होंने उनको कर्मातीत बनाया। सब लोगों ने औरों की सेवा किया, स्वयं को कर्मातीत नहीं बनाया। एक ही ब्रह्मा बाबा बाहर कहीं भी सेवा करने नहीं गया, मधुबन में यहां बैठकर यहां तपस्या किया और कराया। औरों को भी, इतनी दादियों को भी आज सारे विश्व के अंदर सेवा जो चल रही है, मैं तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे हमको 100 ब्रह्मचारी मिला तो बस भारत का नक्शा ही परिवर्तन कर देंगे। आज ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर बाप दादा को कितनी पवित्र आत्माएं मिले, 50,000 कम से कम भाई और बहनें जो समर्पित है, कम से कम 50,000, एक दो नहीं है, 100 भी नहीं। ये कहां से बल आया? और कितने गृहस्थ में रहने वाले पवित्र है तो वो अलग है, समर्पित जीवन कंप्लीट, तन मन धन समय श्वास लगाने वाले कम से कम 50,000 होंगे, 100-200,000 नहीं है। तो ये किसका बल है? तो ये पवित्रता कहां से आई? तब कहा कि ऐसे सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने आके 200 भाई बहनों का यहां माउंट में बैठकर, इतनी ठंडी होती थी इधर, पानी भी नहीं, गर्मी में पानी भी नहीं होता था, ऐसे स्थान पर बैठकर तपस्या किया है। और माउंट का, इस पहाड़ का एक वैल्यू है, ये पहाड़ वैसा है, यहां के जो पत्थर है, यहां के जो गवर्नमेंट भी कहता है और सभी धर्मों का यहां उनका आश्रम है, जितने भी धर्म है, क्यों इस पहाड़ को मानते हैं, यहां कोई तपस्या करता है उसका 100 गुना बढ़ता है, ऐसे वातावरण है इधर। इसलिए सभी साधु संत हरिद्वार ऋषिकेश आके गुफा में तपस्या करते हैं। यहां रघुनाथ मंदिर करके है, वो एक हफ्ता फ्री गुफा और अनाज देता, आप खाना बना के खाओ, पहले था अभी खाना बना के खिलाते हैं। तो ऐसी कितने सालों से व्यवस्था इधर है, ऐसी तपस्या भूमि है। और हम जब शुरू में आए, दादी प्रकाशमणि ने भी 4-5 भाइयों को बुलाया, हम सूरज भाई थे, आतम भाई थे, वल्लभ भाई करके थे और एक रामदयाल भाई करके था, सबको बुलाया खाने पर। और दादी ने पूछा, यहां उस समय 85 भाई बहने थे और कोई नहीं थे, तो कहा आप लोग इधर क्यों आए हो, आप लोगों को सेंटर में जाके सेवा करना चाहिए, यहां क्यों आए हो? तो एक एक ने बोला, हमने कहा दादी बाहर सेंटर में ज्ञान सुन सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तपस्या नहीं कर सकते हैं, वहां तपस्या नहीं होता है। मुरली के समय पर मुरली में आएंगे तैयार होके, मुरली सुनी गए, सारा दिन कर्म किया, सेवा किया, योग कहां होता है? योग करने के लिए शांत शीतल वातावरण चाहिए, ऐसे कहीं नहीं है। तो हमने कहा वो तपस्या करने इधर आए। तब दादी ने कहा ये तपो भूमि है, ये सेवा भूमि नहीं है, सेवा बाहर। तो यहां आने के बाद शुरू में भी हमको 3 ही चीज पता था और कुछ पता नहीं, एक सेवा करना, मुरली सुनाना सुनना और योग करना, और कोई दूसरा कुछ लोग ही नहीं थे, कोई भी 6-8 ही भाई थे। और दीदी मनमोहिनी रोज 6:30 योग करने आती थी, अगर एक भी दिखाई नहीं दिया तो पूछती थी कहां गए, के 5-6 ही थे। तो हम उस समय भी सेवा किया, सेवा भी ज्यादा समय नहीं था, 1-2-4 घंटा, और पढ़ना तपस्या करना। तो क्या दिनचर्या होती थी, हम भी शुरू शुरू में 2 बजे उठ जाते थे और एक एक को उठा करके तपस्या करते थे। दिन में 12 बजे खा के सो गए, 3 बजे उठकर इस सामने वाले पहाड़ी पर, कोई नहीं जाता है, एकांत वहां जाके अकेले तपस्या करते थे। कितना? 3 बजे से 6 बजे तक। वहां से यहां आने के लिए 20 मिनट चाहिए। 6:30 बजे हिस्ट्री हॉल में तैयार, क्योंकि दीदी आती है योग करने के लिए। तो वहां हम जाते थे, 1980 की बात है ये, तो रोज योग करने जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि 6:30 को 6 बजे निकलना, घड़ी भी होती नहीं थी, तो इधर से क्या हो रहा था, चंद्र सूर्य अस्त हो रहा था और इधर से फुल मून, पूर्णिमा का दिन था, चंद्रमा आ रहा था, उजाला था। तो हमने लगा 6:30 बजाने, अभी 6 बजाने और थोड़ा बैठो, तो 6:30 बज गए। नीचे आते आते अंधेरा होने लगा, दिखाई नहीं देता, छोटा सा रास्ता था। तो आते आते हमको तो कोई पता ही नहीं, डर नहीं, योग करने जा रहे, तो छोटे रास्ते पर यहां पूरा खड्डा था और यहां बहुत बड़ा एक पत्थर था, छोटे से जगह पर। तो बाल बड़े बड़े थे, एक गाय का बछड़ा जैसा खड़ा हो गया, आंखें चमक रहे थे, दूर से देखा गाय होंगे, जंगल में कौन आता है, पहाड़ों पर गाय होंगे, गाय के बच्चा होगा। तो देखा आंखें चमक रही थी, मिलते मिलते देखते देखते नजदीक आया, तब भी पता नहीं, एकदम नजदीक आते ही छलांग मार के पत्थर पर खड़ा हो गया, रास्ता खाली हो गया। हम आया, हमको कोई विचार नहीं, डर नहीं, पिच आने के बाद विचार आया, ये जंगल में अभी गाय रात को कैसे होंगी, गाय का बछड़ा, गाय तो नहीं, बछड़ा कैसे होगा। मुड़ के देखा तो कौन था, लायन, इतने बड़े बाल होते हैं ना, हाँ, लायन भी आपको, शेर भी वहां देखता है, को कहीं जा नहीं सकेंगे आप, इधर जाएंगे तो पूरा खड्डा है और यहां पत्थर है, इसी जगह पर देखता है कि आपको अटैक करने के लिए। लेकिन हमें कोई डर ही नहीं, क्योंकि तपस्या करने जाते थे शुरू से, रोज जाके उधर बैठते 3 बजे से 6 बजे तक, और कुछ नहीं था। तो ये तपस्या करने की भूमि है। ऐसे रात को भी जल्दी लाइट होती नहीं थी, लैंप होता था केरोसिन का, हाँ, 8-9 बजे तक सो गए, सवेरे 2 बजे उठे, 1:30 बजे उठ जाते थे, क्योंकि बाबा का कमरा खुलते ही 2 बजे खुलता है, तब तक बंद करते थे। सबसे पहले बाबा के कमरे में हमें पहुंचना है, हमें बाबा से दृष्टि लेना है, लक्ष्य ये होता था, क्योंकि तपस्या भूमि है ये। दादी भी चाहती थी कि ऐसे 2 बजे उठकर हम विशाल भवन में करते थे, 6-8 भाई। तो दादी को पता चला, दादी ने कहा, आप लोग उधर क्यों करते हो, यहां आके कहो, यहां बैठो, और भी आएंगे। कि दादी की भी इच्छा थी, जब भी यहां कोई कॉन्फ्रेंस होता था, 3 दिन दादी कहती थी 6:00 से 8:00 दादी स्वयं आके बैठती थी और सबको कहते, सब सेवा बंद करो, सब आके 6:00 से 8:00 2 घंटा आवाज नहीं, पिन ड्रॉप, तपस्या करो। क्योंकि जो लोग आते हैं वो ज्ञान सुनने के लिए नहीं आते हैं, उनको शांति का, पवित्रता का अनुभव चाहिए, वो शक्ति है। तो वो कहां से आएंगे, ऊपर से तो नहीं आएंगे। आप सभी बैठकर यहां तपस्या करेंगे तब वो शक्ति मिलेंगे ना, अपने आप तो नहीं आएंगे। तो 3 दिन कम से कम सब बैठ करके छोड़कर दादी तपस्या कराती थी। तो ऐसी तपस्या भूमि है ये। जितने भी दादी है, सब दादियों ने बैठकर रोज शाम को सवेरे, यहां हिस्ट्री हॉल में तो हर एक पूरा 4 बजे एक्यूरेट, दीदी मनमोहिनी इतनी बुजुर्ग थी तो भी एक्यूरेट आके बैठ जाती थी। तो ऐसी तपस्या भूमि पर तपस्या करना चाहिए, क्योंकि वातावरण चाहिए। और इसको भट्टी कहते हैं। भट्टी क्यों कहते हैं, मिट्टी का ईंट बनता है, उसको आग लगाते तो हर एक ईंट पकती है, कोई भी कच्ची नहीं रहती है। तो यहां भी आप रोज योग करते हो, घर में भी करते हो, सेंटर में भी करते हो, तो यहां क्यों, तो भट्टी इसके लिए कि एक दीपक जलता है, एक फैन चलता है तो सारा हॉल ठंडा नहीं होता है, सारे फैन एक साथ चलते हैं तो हॉल भी ठंडा हो जाता है। तो हम सबके पास दो दो फैन है, एक नहीं, कितने फैन है, कहां है वो? दो फैन है, कहां है? नहीं, आपके नेपाल वालों के पास नहीं है, है कहां है? दो फैन किसके पास है? हा? दो दो फैन है, एक नहीं, हरेक के पास पता ही नहीं। अरे एक मन चलता है ना, फैन विचार चलता है ना, एक बुद्धि, पहले एक ही था, अभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद बाबा ने बुद्धि का ज्ञान दिया है। दुनिया में कहीं भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है, मन लगाओ। और ब्रह्मा कुमार के अंदर मन का योग नहीं, वो दुनिया का योग है, यहां बुद्धि योग, दिल से याद शब्द यूज किया, याद करो। याद किसको रहती है? मन को नहीं रहती है, बुद्धि को। अरे याद को रहता नहीं, बुद्धू है ये, मैड है ये, तो बुद्धि को सब याद रहता है। जो ज्ञान रोज जो सुनते हो, बच्चा देखो एक साल स्कूल में पढ़ता है, एक साल के बाद परीक्षा में बैठता है, वहां प्रश्न पूछा जाता है, 10 पेज लिखता है, किताब देख के लिखता नहीं है, अंदर जो भरा हुआ है, कहां भरा है वो? बुद्धिवान लिखता है। और जो स्कूल में जाता है, इधर उधर देखता रहता है, खेलता है, जो परीक्षा के समय एक पेज भी लिख नहीं सकता है, क्यों? अंदर गया नहीं। तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा, अपने आप नहीं, सिर्फ सुनने से नहीं, सुनने के बाद समझ में क्या आया, सुनने के बाद अपने आप को पढ़ाओ। आज मुरली सुनते सुनते ही आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने ये करने के लिए कहा, अपने आप ये कैसे करूं, ये क्या करूं, अपने आप से बात करो। आज कहा बाबा ने, अपने आप से बात करो। क्या बात करो? आज बाबा ने मुरली में ये कहा, ये कैसे होगा? फिर कोई मिला उससे उसको बताओ, आज बाबा ने मुरली में ये कहा। तो संस्कार बनता है, तो वो संस्कार सारे कल्प आपके साथ रहता है। तब कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ, ये धन है, ज्ञान धन है। इनको गरीब किसने बनाया, इनको श्रीमंत किसने बनाया? कौन बनाता है गरीब श्रीमंत? संगम पर भगवान आके ज्ञान धन देता है। वो जितना आपने जमा किया, जितना आपने दान किया, उतना धनवान बनेगा। तब का ज्ञान धन दान करो। एक ही मुरली के पॉइंट ले लो रोज, सुनते सुनते ही सिलेक्ट करो आज मेरे लिए कौन सा है, क्योंकि हर मुरली में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। आपको किसको सेवा अच्छा लगता है, किसी को योग करना अच्छा लगता है, किसी को श्रीमत अच्छा लगता है। आज बाबा ने बहुत अच्छा श्रीमत दिया, तो जो आपको अच्छा लगता है अपने आप को पढ़ाओ। आज बाबा ने क्या कहा ये सुना, ये पढ़ाओ बुद्धि को, अपने आप को रिकॉर्ड हो जाएगा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, ये मुझे करना चाहिए, ये कैसे करूं। फिर मुरली क्लास से बाहर गए, कोई भी मिला उसको सवेरे से रात तक कम से कम 5-10 लोगों को सुनाओ, आज बाबा ने ये कहा। रात को सोते समय भी कोई नहीं कमरे में, 3-4 लोग तो होते हो, 2-3 तो होते हैं, आज सोते सोते आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, बाकी भी सुनेंगे, है ना। उस समय बाबा की याद में, बाबा की याद कहते याद क्या करेंगे, जो बाबा ने सुनाया वो याद आना चाहिए, है ना। तो वो इस प्रकार खाना खाने बैठते हो दिन में चलते फिरते, तो ये धारणा है, नहीं तो सुनने से लिख के रखने से किसी को धारणा नहीं होती है, संस्कार नहीं बनते हैं, समझा। तो ज्ञान अंदर जाने के लिए रोज एक बूंद, बस एक एक बूंद रोज ले लो, 10 दिन में 30 दिन में 30 महावाक्य आपके जीवन में आते हैं। सिर्फ सुना नहीं आपने, सिर्फ लिख के नहीं रखा, जीवन में आते थे, कर सकते हैं ऐसा कि नहीं कर सकते हैं? रोज सुन के अभी कल आए थे, दो दिन हो गए ना, तो किसी को सुनाया आज सवेरे से मुरली सुनाया? नहीं। तो नेपाल वाले कंजूस है, दान नहीं करते। कहते राजा ऐसे भी, राजा तो दान करता है। हाँ, ज्ञान दान करो, रखो नहीं, सुन करके जमा करके नहीं रखो। सुनने के बाद तुरंत बाहर, मुरली क्लास से बाहर गए, तुरंत भाई जी मिला, नाश्ते पर भी अकेले नहीं, कोई ना कोई है ना, खाने पर भी है, तो उस समय बाबा की याद मना क्या? अरे देखो, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया, उसका नाम है ब्राह्मण, उसका नाम है पुण्य आत्मा, बुद्धि के अंदर ज्ञान जागृत है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान है तो बुद्धि ये सारे शरीर को चलाती है, ये नहीं देखना, कौन रोकेगा आपको, है ना? मन चंचल है, आइसक्रीम देखते ही खाने की इच्छा होंगी, लेकिन बुद्धि कहेंगे नहीं खाना है, है ना? किस कौन सी बुद्धि? जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान गया है। अगर ज्ञान नहीं गया, वो खा रहा है मैं भी खा रहा हूं, वो भी मोबाइल देख रहा है मैं भी देख रहा हूं, जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान सवेरे भरा वो अपने आप नहीं जाएगा, आपको भरना है अपने आप। इसलिए दुनिया में कहते हैं औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन अपने को पढ़ाना, है ना? रोज अपने आप को पढ़ाने की सेवा, इसको कहा स्व परिवर्तन। दूसरों को परिवर्तन, ये ऐसा, हाँ वो ऐसा है, आप क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो? तो ये बाबा ने आज मुरली में कहा, क्या कहा इसके लिए? हाँ, पर चिंतन और तो क्या होगा उससे, है ना? तो इसके लिए हमारे मुख पर क्या, तो ये ऐसा वो ऐसा, यही बात चलती है। कोई भी किसी को मुरली के पॉइंट कभी नहीं सुनाता है, है ना? आप देख लो, साक्षी होकर सवेरे से मुरली सुनी कोई भी व्यक्ति, कितना भी हो, 50 साल हो, 1 साल हो, कोई भी आपस में मिलते हो, उसके मुख से आज की बाबा ने ये बहुत अच्छी बात बताया, ये एक भी व्यक्ति नहीं बताता है। सही बोला? हाँ। तो हम कहते बाबा से प्यार ये बोलने का प्यार है, करने का नहीं। जो अच्छी चीज होती है वो दान करता है, इसका नाम है शुभ भावना, वो देता है। उसको किसी को देखते ही शुभ भावना माना क्या आज का, रहम माना क्या? किसी को देखते मैं कुछ दे दूं, क्या देंगे आप? ब्राह्मणों के पास क्या है? ज्ञान धन है, वो ब्राह्मण है। किसी को देखते आपके अंदर ये विचार आना चाहिए। इसको बाबा ने बहुत अच्छी एक बात बताया, मुरली में सुनाता है कि औरों की अशुभ वृत्ति को आप परिवर्तन कर सकते हो अपनी शुभ वृत्ति से। ऐसा किसी के पास पावर है? औरों के अंदर मेरे लिए गलत विचार है, उसके अंदर मुझे देखते गलत विचार चलते हैं, क्या आप उसके विचार को चेंज कर सकते हो? किसी के पास ऐसी शक्ति है? अभी बाबा कहता है कि आपकी शुभ वृत्ति से, वृत्ति माना वृत्ति कहां है? मन जो सोचता है उसका नाम संकल्प, बुद्धि जो सोचती उसका नाम वृत्ति। वृत्ति माना गोल गोल, वृत्ताकार। बुद्धि के अंदर कोई चीज गई वो चलती रहती है, मन में आया चला गया, वो पानी की लकीर है। तो मन में जो विचार चलता है उसका नाम संकल्प, बुद्धि के अंदर कुछ चलता है उसका नाम वृत्ति। वृत्ति से वातावरण बनता है, तो वृत्ति माना बुद्धि। स्मृति वो भी बुद्धि, बुद्धि के अंदर याद है। तो सारे नष्ट मोहा, सभी मोह से मुक्त होना चाहते हो, स्मृति लब्धा, स्मृति माना याद, बुद्धि को रहती है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान याद है तो सारे मोह माया अपने आप चली जाएंगी, क्योंकि स्मृति नहीं, क्योंकि बुद्धि सब काम करती है। शरीर के द्वारा रात को भी सोते हो, बुद्धि काम करती है, देखती कौन, स्वप्न भी कौन देखता है, सब कुछ बुद्धि करती है। तब बाबा ने कहा बुद्धि का ज्ञान देने आया है, उस बुद्धि में ज्ञान रखो, रोज एक एक बूंद डालते जाओ, ये हीरा है। तो ये हीरा बुद्धि के अंदर गया, वो बुद्धि आपकी दृष्टि, बोल, खाना, देखना सब अपने आप चेंज करिए। देखना नहीं, ये खाना नहीं, आपको कौन रोकेगा? कौन देख रहा है? कोई नहीं देखता है, आपकी बुद्धि ही आपको रोकेंगी। तब बुद्धि के अंदर ज्ञान जाने की व्यवस्था चाहिए, यह धारणा है। तब आप योग में बैठते हो बुद्धि योग का, अगर रोज ऐसे मुरली के पॉइंट भरते हो तो सवेरे योग में बैठते ही, शाम को योग में बैठते ही, तो आप पूछते हो शिव बाबा कौन? पवित्रता के पर बाबा ने 50 साल से कितना ज्ञान सुनाया, वो कहां है? बुद्धि के अंदर। तो आधा घंटा बाबा से बात कर सकते हो, बाबा आप कहते हो अपवित्र व्यक्ति का खाना नहीं खाओ, तो क्या आप परमधाम से खाना भेजेंगे? आप कहते हो ऐसे ऐसे पवित्र बनो, आप कहते हो स्वप्नों में भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, महापाप है, तो स्वप्न हम कंट्रोल कर सकते हैं? हर बात बात करते रहो, तो आधा घंटा अगर पवित्रता के बात करते बाबा से, तो आधा घंटा आपके बुद्धि में क्या चला? पवित्रता के संकल्प चले, तो शक्तिशाली पवित्रता की स्थिति हुई। तो बुद्धि के अंदर जो चलती है उससे स्थिति बनती है। तो बुद्धि के अंदर याद है जो मुरली सुनी, तो पवित्रता के पर बाबा ने क्या क्या कहा, वो सब भरा हुआ है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो बात करते रहो। ऐसे बाबा ने कहा क्रोध नहीं करो, बाबा घर में बच्चे ऐसे करते वो करते गुस्सा नहीं आता है तो क्या करो? तो एक एक शक्ति के ऊपर बाबा से मंथन करो। जैसे दही में मक्खन है दिखाई नहीं देता है, एक हाथ से ऐसे ऐसे करो मक्खन आएगा नहीं, दो हाथ चाहिए। तो दोनों हाथ से आधा घंटा घुमाते हो तो मक्खन बाहर आता है। तो ये मन बुद्धि दोनों चलाते हो तो मक्खन, शक्ति, मक्खन के अंदर ताकत है, वो तब होते हैं, तब का वृत्ति से वातावरण। तो ये ऐसी तपस्या बैठ के करते हो, आधा घंटा न हिलते हुए स्थिर होकर बैठ सकते हो, उसको कहा एकाग्रता। वो एकाग्रता अनेक जन्मों के जो पाप भरे हुए हैं, कि हम ब्रह्मा कुमारी में क्यों आए, नहीं तो आप मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, सब कुछ करते थे, यहां क्यों आए? वही करो, ये एक काम नहीं करते थे। सारी दुनिया में कहा चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई, पाप को कोई मिटा नहीं सकता है, हूबहू रिपीट कहा। और ये भी कहा कि आप कुछ भी करो उसको मिटा नहीं सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा ने आके रोज कहता है बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, मेरा काम संगम पर एक ही है, पतित आत्मा को पावन बनाकर वापस परमधाम ले जाना है ना। परमधाम भी कौन जाएगा, क्रोध का अंश रह गया तो परमधाम जा सकते हो? वापस इधर ही आना पड़ेगा। तो अभी कहा मुखड़ा देख लो, ये धारणा है, अगर कुछ है यहां ही मिटा सकते हो, क्यों ये तपो भूमि है। इतनी दादियों ने सबने यहां ऐसी तपस्या किया है, ब्रह्मा बाबा भी देखो, बाबा को भी कर्मातीत बनने के लिए एक दिन दो दिन एक महीना नहीं लगा। 1961 में बाबा ने कैलाश बहन करके, अभी भी गांधीनगर में है गुजरात में, वो जयपुर में रहते थे, बाबा ने कहा कैलाश बच्ची को भेजो, बाबा उनको बुखार आया है। नहीं, बाबा ने कहा बुलाए बोलो, बाबा ने बुलाया, झोपड़ी में बुलाया और कहा बच्ची वतन में जाओ। उन्होंने कहा बाबा आपके जैसे एक बाबा ऊपर है, चमकता है, बहुत शक्तिशाली है, तो बाबा ने कहा जाओ। तो 1961 से 68 तक, 8 साल तक बाबा कहीं बाहर नहीं जाते थे, झोपड़ी में बैठकर लेटर लिखना, तपस्या करना, अपने को कर्मातीत बनाया। ऐसे किसी ने अपने लिए तपस्या नहीं किया, सेवा किया, लोगों को सेवा सुख दिया, ज्ञान सुनाया, लेकिन अपनों को कर्मातीत बनाने वाला, जाते समय भी देखो बैठे बैठे कैसे उड़ के चला गया, वो कर्मातीत अवस्था चाहिए। तो उसकी निशानी है, अगर हम ऐसे तपस्या करते हैं,
ऐसे का मतलब 24 घंटे योग नहीं होता है, कम से कम अभी रिफाइन तरीका आया बाबा ने इतने साल से, अभी रिफाइन है, एक एक घंटा नहीं चाहिए, आधा घंटा बैठते योग। ब्रह्मा कुमार इसके अंदर तपस्या करने की विधि है, ये सारी दुनिया में आज तक भी कोई नहीं सिखाता है। जो भी कह रहे स्वामी विवेकानंद का राजयोग, पतंजलि का राजयोग है, ब्रह्मा कुमार इसके अंदर शिव बाबा ने मन बुद्धि मेरे जोड़ो मेरे से तब विकर्म विनाश होते हैं, बुद्धि योग कहा यहां, वो जानना चाहिए। मन का योग नहीं, योग में बैठते हो मैं आत्मा हूं ज्योतिर्बिंदु, अरे आज उसको फोन करना था, माया रावण, ये ब्रह्मा कुमार इसके अंदर राजयोग के अंदर नहीं, यहां कोई भी विचार नहीं था, मन बुद्धि सीधा एकाग्र। और वो एक घंटा नहीं है, तो उसको आत्मा बाबा ने कहा अपने आप से बात करो, शिव बाबा से बात करो, और कुछ नहीं है। इसी को योग अग्नि कहा, इसी को ज्वाला स्वरूप कहा, कोई बात और कुछ नहीं। बात करना आता है तो क्या बात करना है, अपना स्वयं के चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, और कुछ नहीं। मैं कौन, मेरा रूप कैसा है, मेरे गुण कौन से है, अपने आप से बात करो, अपने को जागृत करना है। नहीं तो हम हर सेकंड शरीर के बांध में, कम से कम योग में बैठते हो अपने को आत्म अभिमानी बनाओ, अपने आप नहीं बनता, अशरीरी अपने आप नहीं बनते हैं, शरीर में हम, तो आत्मा को जागृत करो, मैं कौन, पूछो, कौन बताएगा, कौन बताएगा? अगर आपने पूछा, किसको पूछा, मैंने भाई जी को पूछा, भाई जी आपका नाम, तो आप बोलेंगे, तो आपने किसको पूछा, माता जी को नींद आई देख लो, तो बताओ किसको याद रहेगा? हाँ हाँ, जिसकी बुद्धि के अंदर ज्ञान है वो पूछते तुरंत जवाब देता है, तो मन और बुद्धि एक, उसके बुद्धि में व्यर्थ विकल्प माया नींद आती नहीं है। नहीं तो खाली बुद्धि नींद आएंगी, या रावण आएगा, माया आएंगी, बिजनेस आएगा, सब कुछ आपको नहीं, मैं भी बैठू आएगा ही, ये धर्म है, बुद्धि का काम है, बुद्धि का काम है याद दिलाना, वो कभी भी स्थिर नहीं रहती है, उसका दोष नहीं है, उसकी नीति है, कर्म है, धर्म है उसका, जो अंदर है वो बाहर आपको याद दिलाता रहेगा। घड़ी का काम है, घड़ी के अंदर अलार्म लगाओ, 4 बजे अलार्म बजेगा ना, वो घड़ी का दोष नहीं है, आपने उसके अंदर टाइम सेटिंग किया है, उसका धर्म और कर्म है वो। अरे मेरे अंदर गलत विचार चलते हैं, माया, ऐसे बोलो नहीं, ये बुद्धि का धर्म है। अब उस बुद्धि के अंदर ज्ञान भरो, पूछो, आपके जैसे अलमारी में बहुत दवाई है, अगर सिर दर्द की दवाई चाहिए तो क्या करेंगे, ढूंढेंगे ना, बहुत दवाई है, तो ऐसे आपके अंदर बहुत ज्ञान भरा हुआ है, योग में बैठते पूछते हो मैं कौन, बुद्धि ढूंढती है मैं कौन, हाँ उस दिन बताया था, ढूंढ कर लाते, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, इसको कहते बुद्धि का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग, यहां योग है। समझ में आया? अगर बुद्धि को यूज नहीं किया, बैठते ही मैं आत्मा हूं ज्योतिर्बिंदु, ये दुनिया का राजयोग है, ये ब्रह्मा कुमार इसका राजयोग नहीं, ये याद रखना, यहां बुद्धि यूज होनी चाहिए। और जिसकी बुद्धि स्वच्छ है उसको दिव्य बुद्धि कहा, तो उसको आप और बाप में अंतर नहीं कि दोनों स्वच्छ है, सन्मुख दिखाई देता है, तो एक एक घंटा आधा घंटा लीन उसमें एकाग्र हो जाता है, नहीं तो अपने आप नहीं होता है। समझना, तपस्या क्या करना, करने की अपने आप तपस्या होती नहीं है, बैठते ही नींद आ जाता है, दूसरे विचार आते हैं, कारण अंदर बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं भरा है। ज्ञान भरेंगे तो आप बात करेंगे ना, बुद्धि स्वच्छ होगा तो एकाग्र होगा ना, नहीं तो बुद्धि को बैठते ही देखना आप योग में लाल लाइट हो गई, क्यों, रात को नींद नहीं किया, किया बोझ है वो, स्थिर नहीं हो सकता है, उसको कहा अस्तित्व प्रज्ञ, क्यों, अंदर भरा हुआ है। कैसे कहते हैं अंदर भरा हुआ, स्वप्न बताता है, उसके बाद मन बताता है, उसके बाद कर्म दिखाई देता है, सबसे पहले हरेक को तब का मुखड़ा देख लो स्वप्न बताता है। तो इसके लिए कहा अगर आप इनके अंदर मेरे लिए बहुत गलत विचार है, को अर्जुन है उसकी वृत्ति को आप परिवर्तन कर सकते हो। कैसे? शुभ भावना आपके पास है? नहीं। तो कैसे शुभ भावना कहां से लेके आई? शुभ भावना कहां से लाया? कहां है, क्या है वो शुभ भावना? वो चॉकलेट है कि आम है कि क्या है? वो शुभ भावना क्या है? शुभ भावना वो आज हमने इस भाई को रास्ते पर जाते ही मुरली क्लास से बाहर गया, बाहर जाते ही इनको पूछा भाई जी बाबा ने क्या कहा आज? इसको याद नहीं, तुरंत मैंने बताया आज बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात किया, बहुत अच्छा पॉइंट सुना है, कल मैं इधर से जा रहा हूं वो उधर से जा रहा है, मुझे देखते ही उसके मन में क्या याद आएगा? ये आज भाई जी इधर आएगा ना आज मुरली के पॉइंट पूछेगा, मुझे देखते ही उसके अंदर बुद्धि के अंदर मुरली याद आएंगी। ये है आपको देखकर बाबा ने दो तीन दिन कहा पाया उस औरों का योग लगना चाहिए, योग छोड़ दो, आपको देखते ही उसके बुद्धि में मुरली जागृत होनी चाहिए। ये अपने आप नहीं होता है, ये वो बाबा कहता है वृत्ति, ये व्यवहारिक चाहिए। अगर आज आप पूछने जा शुरू करो आपको देखते ही दूर से उसके बुद्धि में जागृत हो जाएगा, है ना। ये है औरों की वृत्ति को परिवर्तन करने की विधि। तो यहां से जाने के बाद भी आपको देखते औरों के अंदर शुभ विचार आना चाहिए, आदत डालो, है ना। कोई भी मिले भाई जी आज बाबा ने क्या कहा उसको याद नहीं, को और जाने आप बताना। तो ऐसी आदत डालो संसार में कोई भी मिले, अज्ञान भी मिले, बाबा नहीं बोलो मुरली नहीं बोलो, उनको बोलना कि क्रोध क्यों आता है, मन में गलत विचार क्यों आता है, ऐसे प्रश्न करो तो अपने आप फिर जवाब देना। तो उसका ये बहुत अच्छी बात बताता है ना। आपको देखते ही कभी भी उसके अंदर अपने आप अच्छे विचार आएंगे, नहीं तो इस कलयुग दुनिया में किसी को देखकर किसी के लिए अच्छे विचार आना, शुभ भावना आना असंभव है। सबके अंदर पतित आत्माएं हैं, तो हम ब्राह्मण बनना चाहते शुभ भावना देना चाहते दूसरों की वृत्ति को परिवर्तन करना चाहते, कुछ कला चाहिए, विधि चाहिए, विधि से सिद्धि है। तो ये तपस्या क्या करना चाहिए, अपना बैठ के इतना ही नहीं, बैठ के तब ये सब करते हो तो आधा घंटा आराम से निश्चिंत होके बैठ सकते हो, सवेरे आधा घंटा शाम को आधा घंटा, ज्यादा नहीं बैठना क्योंकि पुराना शरीर है, है ना। बुद्धि भी इतनी एकाग्र नहीं हो सकती तो दूसरे विचार आने लगेंगे, हमारी कैपेसिटी आज आधा घंटा है। तो तपस्या ऐसे, मधुबन एक ऐसी तपस्या भूमि है, एक एक ने ऐसी ऐसी तपस्या किया है, यहां ज्यादा ज्ञान का भी नहीं चलता है, ज्ञान के क्लासेस भी बहुत कम। अगर मधुबन वालों की यहां भट्टी चलती है, पीस पार्क भी जाते हैं तो भी कोई गीत नहीं, कोई क्लास भी नहीं, एक क्लास होता है दिन में वो भी 11 से 12 बजे, क्यों नींद आती है उस समय, नहीं तो बिल्कुल शाम को तो बिल्कुल 2 घंटे 6 बजे से 8, और बैठकर गीत नहीं सुनते, अपना विचार। तो वो विधि आत्मचिंतन और शुभ बाबा से बात करता है, सूक्ष्मतन में बाप दादा से बात करते हैं, क्योंकि पवित्र वातावरण है, पवित्र वातावरण में जितना समय आप रहते हो तो आपके मन और बुद्धि स्वच्छ, जैसे एसी में बैठते हो ठंडा होता है, बाहर आओ तो गर्मी है ना, तो वो वातावरण पवित्र वातावरण। अगर यहां ही रहेंगे तो यहां अपवित्र वातावरण भरा हुआ है, तब बाबा कहते यहां नहीं, अवस्था उक्ति कला हो तो यहां नहीं वहां, कम से कम सवेरे आधा घंटा शाम को आधा घंटा, 1 घंटा बैठो। संसारी हम गृहस्थी है, कर्म करना, सन्यासी नहीं, गृहस्थ में रहते हुए सब कुछ करते हुए अगर व्यवस्था करते हो, आदत डालते हो शाम को कर्म करके आओ, खाना भी बना के रखा, सब परिवार वाले मिलकर बैठो योग करो, 7:30 बजे खाना खाना है, 7:30 से 8 बजे नियम ही करो, योग करने के बिगैर खाना नहीं, बना के तैयार रख दो 7 से 7:30 घर बैठो या सेंटर में, जो सेंटर में नहीं जा सकते, अभी हम देखा दुबई में सबके सब और रात दिन में भी उनको इतनी काम करना पड़ता है, 45 डिग्री गर्मी है, इतनी गर्म है, तो भी सबको जॉब में डाल, एक व्यक्ति खाली नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में 3 बजे उठकर स्नान करके हर एक 4 बजे तैयार, पूरा हॉल का हॉल, 4 से 5 मुरली ये योग, 5 से 6 मुरली, 6 बजे मुरली सुन के गए और घर से नाश्ता लेकर के जॉब पर गए। हर एक व्यक्ति जॉब करता है, ऐसे कोई रह नहीं सकते वहां, इतनी कॉस्टली है रहना। एक बूंद 40 रुपए आपको 1 लीटर पानी, पानी बिल्कुल है ही नहीं, समुद्र का पानी फिल्टर करके देते हैं सारे दुबई को, समुद्र का पानी, नहीं तो उधर रेती है तो कहां से पानी आएगा। तो ऐसी जगह पर भी देखा सवेरे एक, अरे एक भी नींद नहीं करता, बिल्कुल अलर्ट। तो मनुष्य चाहिए, मनुष्य के अंदर समझ चाहिए, क्योंकि उनको उधर मेहनत करके आए तो उनको कमाई क्या है पता चलता है, कितनी मेहनत है, तो उनको लगता है यहां हम पुरुषार्थ करना है, और दिन में रेस्ट भी नहीं मिलेगा, शाम को ही सारा दिन, इतनी गर्मी है सब जगह, ऐसी भी तो नहीं होता है, तो मेहनत कैसे दुनिया करती है। तो हमें भी संसार में ऐसे नहीं, हाँ टू मच भी नहीं जाना चाहिए, कभी संसार छोड़कर माता जी कहेंगे घर में सब छोड़ के मुझे 7 बजे मुरली क्लास में जाना है, नहीं, गृहस्थ धर्म को भी संभालना है। आपने गृहस्थ बनाया तो उसकी भी पालना आपको करना है, वो आपका धर्म पहले, वो छोड़ के नहीं तो लड़ाई झगड़ा होंगी, है ना। गृहस्थ धर्म पहला करो, फिर अपने सवेरे नहीं जा सकते हो, शाम को जाओ, दोनों में बैलेंस चाहिए, तब घर भी शांत, आपके अवस्था भी शांत, योग में बैठो तो कोई भी खिटपिट नहीं है, न परिवार बुलाता है, न कोई खींचता है, अपने सब व्यवस्था करके आके बैठो तो निश्चिंत मुरली जो सुनते वो अंदर जाती है। नहीं तो बैठे यहां हो, बार बार चिंता, बच्चे ने नाश्ता किया कि नहीं, पति ने ये किया कि नहीं, तो यहां बैठ के फायदा नहीं है, है ना, वो बंधन वाला जीवन हो गया। तो अपना कर्म, दुनिया में भी बिजनेस करते हो, घर में बाहर भी कुछ काम करते हो, सब कुछ करो निश्चिंत, उसको कहा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कर्म बांट लो, किस समय क्या क्या करना है, बाबा उसको कहते हैं दिनचर्या बनाओ, सवेरे उठते ही मुझे आज क्या क्या करना है, कब कब क्या करना है, तो वो सारा बना के रख दो, उस अनुसार करते हो तो खींचता नहीं है, योग में बैठे याद नहीं आता है और कुछ, ये मुझे 6 बजे करना है, ये 8 बजे करना है, ये कल करना है, अगर आपने समय नहीं दिया तो यहां बैठे बैठे याद आएगा, बुद्धि का काम है ना, और बुद्धि को आपने काम में नहीं लगाया तो यहां योग में बैठते यहां से परमधाम तक बुद्धि से बात करते रहो, एक सेकंड आपने खाली छोड़ा तो जरूर कोई ना कोई अंदर घुसेगा, इतनी सूक्ष्म बुद्धि, इतनी चीजें भरी हुई इसके अंदर, है ना, आपको पूछ के कुछ नहीं आता है, पूछ के आता है कोई नहीं, बिना पूछे घुसता है, इसलिए उसको बिजी रखो, इसलिए कहा मन बुद्धि को बिजी रखने की विधि बताया, प्रश्न करते रहो, अगर मैं इनको पूछता रहूं तो ये इधर उधर देख ही नहीं सकते, है ना, कभी भी कुछ पूछ सकता हूं, इधर इनको देख ही नहीं रहा हूं, खाली है, खाली व्यक्ति क्या करेगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, है ना, खाली है। तो अपने बुद्धि भटकने का कारण हमको बुद्धि को चलाना नहीं आता है, समझ में आया। तो ये तपस्या अगर आप करते हो तो उसका जीवन, उसको लगता है सारे कल्प का आधार है, सारे कल्प में आपको सुख शांति चाहिए, वो कौन देगा, कहां से आएंगे, कोई देगा, कितनी भी कमाई भी कर लो आप, उधर आप कहेंगे मैं बिजनेस करूंगा, इंडस्ट्री डालूंगा, पैसे भी कमाएंगे, लेकिन आप खा नहीं सकेंगे, क्यों, अंदर पाप है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि पाप आत्मा इस सृष्टि की संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकता है। आज भी भारत गरीब नहीं है, भारत के अंदर इतना सोना हीरा अभी भी है, आप जानते हो एक पद्मनाभ टेम्पल करके है कर्नाटक तमिलनाडु में, इतना सोना है, मंदिर में आज तक आता है, भारत में अभी भी कमी नहीं है, लेकिन भारत वाले गरीब है, पुण्य आत्मा नहीं। पत्थर को देखते ही सोना दिखाई देगा, पुण्य आत्मा है। सोना को देखते ही पत्थर दिखाई देता है कि अंदर पाप आत्मा है। तब बाबा बच्चों को कुछ देता नहीं। देखो दुनिया में कितने लोगों के पास सिद्धि है, सिर पर हाथ रखो काम हो जाएगा, कोई वचन देता है आशीर्वाद करता है। ब्रह्मा कुमार इसके अंदर किसी को भी सिद्धि नहीं दिया है। देखा ब्रह्मा कुमार किसी को दृष्टि दे दो, किसी को सिर कर हाथ रखो, किया किसी कोई सिद्धि नहीं। शक्ति का यूज यहां नहीं करना, नहीं तो सभी दुनिया में शक्ति का यूज यहां ही नाम कमाएंगे। तो वो किसी की बीमारी सुन करो ये नहीं, वो करता। उसने कहा बाबा ने मैं पतित को पावन करने आया हूं, आप तपस्या द्वारा अपने को पावन करो, अपने को कर्मातीत बनाओ, ये आपकी सिद्धि है। ब्रह्मा कुमार के अंदर दूसरों की बीमारी या कुछ करना ये सिद्धि नहीं है। देखना किसी को बाबा ने कितनी दा दिया, किसी के पास कोई पावर नहीं दिया किसी को, और ब्रह्मा बाबा ने भी किसी को कुछ नहीं किया। अपने को विकर्म नाश करो, अपने को कर तप सिद्धि से शक्ति से अपने को परो, आप पवित्र हो। आप ऊपर जाने के बाद सारे विश्व की सेवा कर सकते हो। पुण्य आत्मा ही, कर्मातीत आत्मा ही, संपन्न आत्मा ही औरों को कुछ दे सकती है। जिसके पास कुछ है ही नहीं तो दूसरों को क्या देंगे, दे सकते हो? तो तब बाबा ने यहां ब्रह्मा कुमार इसके अंदर यह व्यवस्था है, स्वयं को कर्मातीत बनाओ, स्वयं को संपन्न बनाओ। तो संपन्न बनाने की तीन ही चीजें हैं, एक रोज एक मुरली के पॉइंट आपके बुद्धि में चाहिए। रात को भी किसी ने पूछा बहन जी आज बाबा ने क्या कहा, तुरंत आप बताते हो, तब आप समझना मैं पुण्य आत्मा हूं, मेरे अंदर उसको कहते दिल में दिलाराम है। दिल माना बुद्धि, बुद्धि के अंदर दिलाराम नहीं बैठता है, उसका श्रीमत बैठता है, ज्ञान बैठता है, जो सुना तो सदा याद है। तो ये कौन करेगा, नेपाल वाले कर सकते वैसा? तो नेपाल में पहला स्वर्ग आ जाएगा। हाँ, और नेपाल में सबसे पहले क्रोध मुक्त होगा। अगर आप 10-15 दिन ऐसे करते हो, ये मुरली के पॉइंट याद रखते हो, ये संजीवनी बूटी है, क्रोध को मिटाने की दवाई है। मुरली सुनकर रखना नहीं, रोज एक शब्द सवेरे से रात तक कम से कम 10 लोगों को सुनाना है। चाहे पढ़ के सुनाओ, लिख करके जेब में रखो पढ़ करके सुनाओ, या ऐसे ही सुनाओ, ये एक काम करना है। तब कहेंगे तपस्या का करना सब लोग चाहते हैं, मैं तपस्वी बनूं योगी बनूं, अपने आप नहीं, ये एक काम करना चाहिए। इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई तकलीफ है? आप देखो जानकी दादी भी मुरली क्लास होते ही बुलाती थी और बैठ करके नाश्ता नहीं करती थी, पहले बैठ के मुरली का रिवीजन करके फिर नाश्ता करती थी। हर एक बाबा भी दादी अभी मुरली क्लास से आई और 10-20-25 लोगों को मुरली के पॉइंट लिखती थी पोस्ट कार्ड पर, बाबा भी लिखता था। पहले मुरली की सेवा करते थे फिर नाश्ता करेंगे, तो पहले सेवा कितने लोगों को, पहले आज के जैसे मोबाइल नहीं था तो आए 10-12 लोगों को जो अनन्य सेवा करते हैं। तो बाबा पत्र लिखता था मुरली के पॉइंट और कुछ नहीं, दादी दीदी सब लोगों का। ये अपने आप तपस्वी नहीं बने, मुरली सुन करके रखने के लिए नहीं, सिर्फ सुनाने के लिए नहीं। हर एक मुरली सुनने के बाद दादी भी, एक दिन ऐसा हुआ हम आया मिलने के लिए, दादी लिख रहे थे कुछ, तो कैसे गॉड कॉन्शियस कहते हैं है ना, शिव बाबा के स्मृति में कैसे रहते हैं। मुरली लिखते समय भी, मुरली क्लास हुआ उसके बाद मैं आया मिलने के लिए, दादी लिख रही थी, एक बार देखा ऐसा झाक के लिख रही, चलो गया वापस 5 मिनट के बाद आया फिर भी लिख रही है, तो छाया पड़ती है दिखाई देता थोड़ा सा। हाँ आओ बच्चे, दादी ने आओ इतने आओ बच्चे, मना सी इज इन गॉड कॉन्शियस। कि बुद्धि के अंदर कौन है? बाबा बेटा, बाबा लिख रहा है, बाबा के पॉइंट्स लिखने के बाद पोस्ट लिखकर फिर नाश्ता करने जाएंगे। ये पढ़ाई है, सिर्फ मैंने पढ़ लिया नहीं, पढ़ने के बाद मुरली क्लास से नाश्ते जाने तक कम से कम एक दो लोगों को आपके मुख से आज के मुरली के पॉइंट निकलना चाहिए, तब आप ब्राह्मण हो। सिर्फ आपने सुना लिख के रखा कोई फायदा नहीं, वो डायरी कल खुलेंगे फिर, है ना, क्या काम का है? डायरी भरी, सफेद को काला कर दिया और भी नुकसान कर दिया। हाँ, तो नेपाल वाले पक्के ब्राह्मण बनो, अभी भी नेपाल आध्यात्मिक है ना, तो वो करके दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। हर एक के मुख से कभी भी मिले कोई भी आज की मुरली के पॉइंट सुनाना है, इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ, इसमें कोई भी तकलीफ है किसी को? कर सकेंगे सभी तो नेपाल में स्वर्ग पहले आएगा। हाँ, कर सकते हो ना, एक पक्का करके जाओ कि रोज हमें दान करना है ना, ये पक्का। दूसरा और एक धारणा करो, सवेरे आधा घंटा सेंटर में आके करते हो, दीदी अगर पूछो तो वो सेंटर में आके करते, बहुत अच्छा वातावरण रहता है सवेरे के, घर में नहीं कर सकते, कोई सोया है और कोई कुछ करता है, वातावरण नहीं होता है। अगर सेंटर में आके करते हो नंबर वन नहीं तो घर में, जैसे गर्मी है तो छत पर, उधर ठंडी होती है तो आराम से बैठ के आधा घंटा, ज्यादा नहीं करना है ना, 3 बजे उठो भी नहीं, शरीर को नींद भी चाहिए, शरीर का भी ध्यान चाहिए, आधा पौन घंटा बैठो 4 से 5, उसमें उठने के बाद पानी पिया, थोड़ा मुरली पढ़ो और बैठ के अपने आप से बात करो, खाली बैठेंगे तो विचार आएगा, शिव बाबा से बात करो, शिव बाबा की एक एक शक्ति। हाँ, कल बताया था, याद है सर, किसको याद है? शिव बाबा को कैसे याद करते हो, क्या याद करते हो, कौन बताएगा? यहां में से शिव बाबा को याद करते हो तो क्या याद करते हो? टोपी वाला बताओ, शिव बाबा को याद करते हो क्या याद करते हो? पढ़ाई थोड़ी याद, शिव बाबा को याद करना है। हा? बाबा को याद करना, जैसे देखो बच्चे को भूख लगी कौन याद आएगा? माँ याद आएंगी। बच्चे को पैसा चाहिए तो कौन? माँ याद आएंगी, पिताजी याद आएगा। तो आप शुभ बाबा को क्यों याद कर रहे हो? कौन, क्या है उसके पास? हाँ, शुभ बाबा के पास सर्वशक्तियां है, सर्वशक्तिवान है, उसकी सर्वशक्तियों को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ बाबा बाबा करने से नहीं, शुभ बाबा पवित्रता का सागर है, 8 शक्तियां है, इन 8ों, ये बाबा का वर्षा है, इन शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करते हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। तो वो 8 रत्नों में आते हैं, कौन सी लदे? तो लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति है धन की, सरस्वती के पास एक ही शक्ति है विद्या की। बाबा चाहता है मेरी सर्वशक्तियों के अधिकारी, कौन सी शक्ति है वो? पवित्रता का सागर, रोज मुरली में आता है, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता, ये शक्तियां और किसी के पास नहीं है, कोई देवी देवताओं के पास भी नहीं, एक ही शिव बाबा के पास है। पवित्र मुरली में रोज आता है, देखना, पवित्रता का सागर हूं, सिर्फ पवित्र नहीं, वो आत्मा के हो गया है ना, सागर, आनंद का सागर है, नहीं तो स्नेह कहते हैं, तो आनंद का सागर है, यह आध्यात्मिक शब्द है। शिव बाबा आनंद ज्ञान का सागर है, दुख हर्त, एक एक शक्ति लेकर शिव बाबा से बात करते हो तो उसको कहते याद, वो चलते फिरते भी करो तो शक्तिशाली स्थिति है, नहीं तो स्थिति का कलयुग है ये, हर कदम में दुख ही समस्या ही है, कांटों का जंगल है, अगर इसमें अगर आप जीतना चाहते हो तो स्थिति चाहिए। स्थिति कैसे बनेगी? मंथन करने से स्थिति बनेगी, बुद्धि के अंदर चलता रहना चाहिए, कर्म करो, सब कुछ करते रहो, करते करते बाबा की याद में कर्म करो, आज बाबा ने कितनी दफा कहा याद करो, कहा मुरली में बार बार, तो क्या याद करेंगे? आपका विचार चलना चाहिए, क्या याद करूं, निरंतर क्या याद करूं? और बाबा की याद चाहिए, ज्ञान की याद नहीं कहा, और कोई याद नहीं कहा, ज्ञान का याद कर सकते हो, बाबा की कहा। बाबा कौन? सर्वशक्तिवान है, वो भी कहा निराकार है वो। घर में भी निराकार का फोटो रखो तो शक्ति निराकार से बस सब कुछ सुनाता है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारा ध्यान यूट्यूब पर जाता है ना। जो आजकल दुनिया में रेडीमेड चीज जो मिलती है ना, वो अच्छी दिखाई देती है, है ना। रेडीमेड में जो सुनाता है यूट्यूब में, जो कुछ सुनाते हैं वो अच्छा लगता है ना। ये जाता नहीं है, क्यों? मुरली पर ध्यान नहीं है। तो ये भगवान की पढ़ाई मुरली है। यूट्यूब में सुनाने वाला कौन है वो, है ना। मार्केट में बहुत लोग बेचते हैं, नहीं, मुरली से ले लो। मुरली शिव बाबा की श्रीमत है ना। रोज मुरली से एक ही शब्द ले लो, ज्यादा भी नहीं। ये तपस्या का आधार है, तब आपके द्वारा जो सेवा होती है वो पद्मों की कमाई जमा करता है, सिर्फ आज नहीं सारे कल्प के लिए। तब बाबा ने कहा मेरे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। ऐसी तपस्या कर सकते हो, तीन ही काम करना है, कर सकते हैं, लेकिन और एक काम करना चाहिए। तो कब के नेपाल में अगर पहले सत्युग आना है तो बाबा ने कहा सत्युग में एक अंश भी क्रोध का नहीं रहना चाहिए। अभी किस किस के पास है? सबके पास है, नहीं अभी भी बहुत लोगों के पास नहीं। अगर है भी तो ये भट्टी का दक्षिणा देना पड़ेगा ना, ब्राह्मण को दक्षिणा देना पड़ता है। तो मधुबन में आप खाली हाथ जाएंगे, बाबा को कुछ देके नहीं जाएंगे, क्या देंगे? हाँ, तो सब एक चिट्ठी लिखो, क्रोध लेके नहीं जाना, नेपाल में क्रोध नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां बाबा को कमरे में चिट्ठी, बाबा ये क्रोध को मधुबन रख दो, आप नेपाल में भेजना नहीं, नेपाल को क्रोध मुक्त बनाना है। तो कुछ दान करके जाएंगे ना, तो कर सकते हो कि ले जाना चाहते? हाँ हाँ, तो लेके नहीं जाना चाहते? नहीं, माताजी कहते थोड़ा क्रोध होना चाहिए। हाँ, नहीं तो बच्चे सुनते नहीं, क्रोध किया तो सुनते हैं, थोड़ा सा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। हाँ, तो अगर लेके जाएंगे तो सत्युग में नहीं, फिर द्वापर युग में बुलाना पड़ेगा। हाँ, सत्युग में आना चाहते हो तो क्रोध मुक्त चाहिए, और वो आपके हाथ में है। अगर आपके पिताजी कुछ बोलता है आप चुप रहते हैं ना, हाँ, बाकी भाई ने कुछ कहा तो चार बोल देंगे, है ना। तो आपके पास सहन करने की पहले से इनबिल्ट शक्ति है, उसको सब जगह यूज करो, मुझे नहीं करना, अपने आप को पढ़ाओ, ठीक है। ओम शांति।
इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने, इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने,
हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया,
हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।